एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज की इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है।
हाँ जी, बिल्कुल स्वागत है। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान
और मैं आपका दूसरा साथी। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, उसने सच में दुनिया को हिला कर रख दिया था। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल।
हाँ, जिसे हम आम तौर पर पूंजी या कैपिटल कहते हैं।
बिल्कुल।
और ये मत सोचिए कि ये कोई पुरानी धूल खाती किताब है। मतलब आज भी जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं,
हाँ,
अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, नौकरियों का बाजार, तनख्वाहें और ये जो बार बार आर्थिक मंदी आ जाती है, मार्क्स के विचार आज भी मतलब चौंकाने वाले ढंग से बिल्कुल काम के लगते नहीं।
बिल्कुल। और ये सिर्फ अर्थशास्त्र की बात नहीं है।
नहीं,
ये समझने की कोशिश है कि पैसा कैसे काम करता है, समाज कैसे चलता है और असल में पावर किसके हाथ में है।
सही कहा। तो चलिए आज इसी इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में।
जरूर।
तो सबसे पहले उस इंसान के बारे में थोड़ी बात करते हैं जिसने ये सब लिखा, कार्ल मार्क्स। वो सिर्फ कोई किताबी कीड़े नहीं थे।
हाँ, बिल्कुल नहीं। 1818 में जन्मे मार्क्स जर्मन थे, लेकिन सिर्फ एक दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं,
हाँ,
वो इतिहासकार, समाजशास्त्री और पक्के तौर पर एक क्रांतिकारी विचारक भी थे।
अच्छा,
उनकी सोच में कई चीजें मिली हुई थी, जर्मन फलसफा, फ्रांस की समाजवादी लहर और हाँ, ब्रिटेन के क्लासिक अर्थशास्त्रियों की बातें भी, एडम स्मिथ, रिकार्डो।
और ये दिलचस्प है कि उन्होंने सिर्फ पढ़ा ही नहीं, उन्होंने देखा भी।
हाँ, ये जरूरी बात है।
लंदन में रहते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि औद्योगिक क्रांति के बाद फैक्ट्रियों में मजदूरों की क्या हालत थी।
ब्रिटिश म्यूजियम में सालों बैठकर उन्होंने सरकारी रिपोर्टें, आंकड़े, सब कुछ सब खंगाल डाले।
मतलब उनकी बातें हवा हवाई नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जमीनी हकीकत पर आधारित थी और वो पूंजीवाद को ऐसे नहीं देखते थे कि ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। वो इसे इतिहास के एक दौर की व्यवस्था मानते थे, जो बनी है तो बदलेगी भी।
अच्छा,
यही चीज उन्हें अपने समय के दूसरे विचारकों से काफी अलग करती थी।
तो अब आते हैं इस मोटी सी किताब कैपिटल पर। आखिर है क्या इसमें?
देखिए, पहली बात तो ये कोई बिजनेस गाइड या शेयर बाजार की टिप्स वाली किताब नहीं है।
हाँ, ये तो पक्का है।
ये एक तरह से पूंजीवादी सिस्टम का एक्सरे है। मार्क्स सतह के नीचे झांककर उन असली रिश्तों और ताकत के समीकरणों को दिखाने की कोशिश करते हैं जो पूरी मशीनरी को चला रहे हैं।
और उनका सबसे बड़ा दावा क्या है, मतलब मेन आर्ग्यूमेंट?
वो कहते हैं कि ये जो लेन देन का सिस्टम हमें बड़ा आजाद और निष्पक्ष दिखता है ना।
हाँ, बिल्कुल फेयर लगता है ऊपर से तो।
हाँ, असल में ये मालिकों मतलब पूंजीपतियों के फायदे के लिए झुका हुआ है।
और ये फायदा आता कहाँ से है?
यहीं पर उनका सबसे मशहूर और हाँ, विवादास्पद विचार आता है। ये मजदूरों के शोषण से आता है।
शोषण से?
हाँ, जिसे वो कहते हैं अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू।
अच्छा, सरप्लस वैल्यू। इस पर आएंगे तो किताब हमें एक सफर पर ले जाती है।
बिल्कुल। पहले बाजार की चमक दमक, चीजें बिक रही हैं, पैसा घूम रहा है, फिर मार्क्स हमें फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं, उस छिपी हुई जगह पर जहां असल खेल होता है।
जहां मुनाफा बनता है।
एग्जैक्टली। यहीं पर वो कमोडिटी यानी वस्तु, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, सरप्लस वैल्यू, कैपिटल अक्यूमुलेशन, पूंजी संचय, इन सब बातों की परतें खोलते हैं।
हाँ, सुनने में ये शब्द थोड़े भारी लगते हैं,
बिल्कुल।
पर समझना जरूरी है।
हाँ, हैं बड़े काम के। और वो सिर्फ ये नहीं बताते कि सिस्टम कैसे काम करता है, बल्कि ये भी कि इसमें अंदरूनी टकराव हैं।
टकराव कैसे?
जैसे उत्पादन तो सब मिलके करते हैं, है ना, सामाजिक तौर पे,
हाँ, फैक्ट्री में सब मिलके काम करते हैं।
पर उसका कंट्रोल और मुनाफा
हाँ
वो कुछ ही लोगों के पास निजी हाथों में जाता है।
हाँ ये तो है।
मार्क्स मानते थे कि यही टकराव, ये जो खिंचाव है, यही समाज को आगे बढ़ाता है, जिसे वो वर्ग संघर्ष कहते हैं।
क्लास स्ट्रगल।
अच्छा, तो चलो इन आइडियाज में थोड़ा और गोता लगाते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है?
मार्क्स शुरू करते हैं सबसे छोटी, सबसे आम चीज से जो पूंजीवादी समाज में हर तरफ दिखती है, वस्तु।
कमोडिटी।
यानी कोई भी चीज जो बेचने के लिए बनाई गई हो। मेरा ये माइक, आपकी ये कुर्सी।
हाँ, बिल्कुल। और वो कहते हैं कि हर वस्तु के दो चेहरे हैं।
दो चेहरे,
हाँ, एक उपयोग मूल्य,
यूज वैल्यू।
यानी वो हमारे किस काम आती है, जैसे आपने कहा माइक आवाज रिकॉर्ड करने के काम आता है,
ठीक है।
और दूसरा
दूसरा विनिमय मूल्य।
एक्सचेंज वैल्यू,
हाँ,
यानी बाजार में इसकी क्या कीमत है, ये कितने में बिकेगी या बदले में क्या मिलेगा।
या 20 के।
सही सवाल। मार्क्स का जवाब है उनमें लगी इंसानी मेहनत। उनका मूल्य का श्रम सिद्धांत कहता है कि किसी चीज की कीमत मोटे तौर पर उसे बनाने में लगने वाले औसत जरूरी मेहनत के समय से तय होती है।
औसत जरूरी मेहनत का समय मतलब सोशली नेसेसरी लेबर टाइम।
हाँ, मतलब उस वक्त की टेक्नोलॉजी और कुशलता के हिसाब से समाज में औसतन कितना समय लगता उसे बनाने में।
समझ गए। यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प आइडिया आता है, वस्तु पूजा, कमोडिटी फेटिशिज्म। ये सुनने में बड़ा अजीब है।
हाँ, है ना, पर मतलब गहरा है। मार्क्स कहते हैं कि बाजार में चीजें ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे उनमें अपनी जान हो, उनके अपने रिश्ते हों।
जैसे?
जैसे हम कहते हैं सोने का भाव चढ़ गया, प्रॉपर्टी महंगी हो गई, है ना। हम चीजों के रिश्ते देखते हैं।
हाँ बिल्कुल।
और उनके पीछे जो इंसानी मेहनत है, जो सामाजिक रिश्ते हैं, वो गायब हो जाते हैं, पर्दे के पीछे चले जाते हैं।
बिल्कुल। जैसे हम फोन खरीदते वक्त ये नहीं सोचते कि इसे बनाने वाले मजदूर कहाँ किन हालातों में काम कर रहे होंगे, बस फोन और उसकी कीमत दिखती है।
एग्जैक्टली।
मार्क्स कहते हैं कि इसी पर्दे के पीछे शोषण छिपा रहता है, और इसी लेन देन को आसान बनाने के लिए पैसा बीच में आता है जो सबका मोल लगा देता है, एक यूनिवर्सल इक्विवेलेंट।
ठीक है, पैसा आ गया, लेकिन ये साधारण पैसा पूंजी या कैपिटल कैसे बनता है?
हाँ, ये बड़ा सवाल है।
हाँ, ये क्रूशियल पॉइंट है। मार्क्स दो तरह के सर्कुलेशन या चक्कर बताते हैं।
अच्छा।
एक है CMC, कमोडिटी मनी कमोडिटी, मतलब आपने कोई सामान सी बेचा, पैसा एम मिला, उस पैसे से जरूरत का दूसरा सामान सी खरीद लिया।
हाँ, जैसे किसान ने अनाज बेचा, पैसे से कपड़े खरीद लिए।
बिल्कुल। यहां मकसद जरूरत पूरी करना है, लेकिन पूंजीपति का चक्कर है MCM प्राइम।
MCM प्राइम।
हाँ, वो पैसे एम से शुरुआत करता है, उससे सामान सी खरीदता है, कच्चा माल, मशीनें और सबसे जरूरी मजदूर की काम करने की क्षमता, लेबर पावर। फिर इन सबको मिलाकर नया सामान बनाता है जिसे बेचकर उसे ज्यादा पैसा मिलता है, पहले से ज्यादा।
तो यहाँ मकसद है पैसे से और पैसा बनाना।
बिल्कुल। वो जो ज्यादा पैसा है वही तो है मुनाफा या अतिरिक्त मूल्य।
तो ये अतिरिक्त पैसा आया कहाँ से? क्या सिर्फ होशियारी से सस्ता खरीदकर महंगा बेचने से?
मार्क्स कहते हैं नहीं, अगर ऐसा होता तो सिस्टम में नया पैसा बनता ही नहीं, बस इधर का उधर होता रहता, वैल्यू क्रिएट नहीं होती।
तो फिर
असली जादू, वो कहते हैं, उत्पादन में होता है, फैक्ट्री के अंदर। पूंजीपति बाजार से एक ऐसी खास चीज खरीदता है जिसमें ये काबिलियत है कि वो खुद अपनी लागत से ज्यादा मूल्य पैदा कर सके।
और वो जादुई चीज क्या है?
वो है श्रम शक्ति, लेबर पावर,
इंसान की काम करने की क्षमता।
हाँ, पूंजीपति मजदूरी देकर मजदूर को नहीं खरीदता, बल्कि उसकी काम करने की ताकत को एक निश्चित समय के लिए खरीदता है। यहीं से मुनाफे का राज खुलता है।
अच्छा, तो ये अतिरिक्त मूल्य बनता कैसे है? जरा और आसान करके समझाओ प्लीज।
ठीक है, कोशिश करता हूँ। सोचो, एक मजदूर है, उसे जिंदा रहने और रोज काम पर आने लायक बने रहने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, खाना, कपड़ा, किराया वगैरह।
हाँ, बेसिक जरूरत है।
मान लो वो दिन में 4 घंटे काम करके इतना मूल्य पैदा कर लेता है जितनी उसकी इन जरूरतों की कीमत है।
ठीक।
पूंजीपति उसे इसी 4 घंटे के बराबर मजदूरी देता है। ये हुआ लेबर पावर का दाम।
ठीक है, ये तो हुआ हिसाब बराबर, फेयर डील लगी।
लेकिन यही तो खेल है, पूंजीपति ने उसे 4 घंटे के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन के लिए, मान लो 8 घंटे के लिए खरीदा है।
अच्छा।
तो मजदूर पहले 4 घंटे काम करके अपनी मजदूरी के बराबर मूल्य पैदा कर लेता है। इसे मार्क्स कहते हैं आवश्यक श्रम समय, नेसेसरी लेबर टाइम। पर वो रुकता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो 8 घंटे का है, वो अगले 4 घंटे भी काम करता है।
और उन अगले 4 घंटों का क्या, उसका पैसा?
वो जो अगले 4 घंटे हैं वो अतिरिक्त श्रम समय है, सरप्लस लेबर टाइम। इस दौरान वो जो मूल्य पैदा करता है उसका पैसा उसे नहीं मिलता।
अरे,
यही अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू है। ये वो बिना चुकाया गया श्रम, अनपेड लेबर है, जो पूंजीपति के मुनाफे का असली स्रोत बनता है।
बाप रे, मतलब मजदूरी का सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है कि उसमें शोषण छिपा है। ये कोई पर्सनल बुराई की बात नहीं।
मार्क्स के अनुसार हाँ, ये सिस्टम का स्ट्रक्चरल हिस्सा है। अब पूंजीपति कोशिश करता है कि ये अतिरिक्त मूल्य ज्यादा से ज्यादा हो।
कैसे?
इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, सिंपल, काम के घंटे बढ़ा दो, एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू, 8 की जगह 10 घंटे काम कराओ, तो 2 घंटे का अतिरिक्त मूल्य और बढ़ गया। पुराने जमाने में ऐसा बहुत होता था।
हाँ, सुना है। और दूसरा तरीका?
दूसरा है कि काम के घंटे उतने ही रखो, पर उसी समय में ज्यादा काम निकलवा लो, रिलेटिव सरप्लस वैल्यू, यानी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो।
अच्छा, एफिशिएंसी बढ़ाकर।
हाँ, ये कैसे होता है? बेहतर तालमेल से, काम का बंटवारा करके, और खास तौर पर मशीनें लगाकर।
मशीन?
हाँ, अगर मशीन की मदद से मजदूर अब अपनी मजदूरी का मूल्य 4 की जगह मान लो 2 घंटे में ही पैदा कर लेता है,
तो
8 घंटे के दिन में अतिरिक्त श्रम 4 घंटे से बढ़कर 6 घंटे का हो गया, बिना वर्किंग डे बढ़ाए।
लेकिन तकनीक तो अच्छी चीज है ना, काम आसान करती है।
यही मार्क्स की बात सोचने वाली है। वो कहते हैं कि पूंजीवाद में तकनीक का इस्तेमाल अक्सर मजदूर का बोझ हल्का करने के लिए नहीं होता,
तो फिर किस लिए?
बल्कि उससे ज्यादा काम निचोड़ने और उस पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए होता है। मशीनें कई बार मजदूरों को कम हुनर वाला डी स्किल बना देती हैं, उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। काम की रफ्तार मशीन तय करती है, मजदूर नहीं।
जो चीज आजादी दे सकती थी वो एक तरह से बंधन बन जाती है।
बिल्कुल।
तो ये जो मुनाफा कमाया अतिरिक्त मूल्य, उसका मालिक क्या करता है? बस ऐश करता है?
कुछ हिस्सा जरूर करता होगा, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि सिस्टम का दबाव, कंपटीशन का दबाव उसे मजबूर करता है कि वो मुनाफे का बड़ा हिस्सा फिर से बिजनेस में लगाए,
रीइन्वेस्ट करे।
हाँ, और ज्यादा मशीनें और कच्चा माल और मजदूर, ताकि और बड़ा हो सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके। इसे ही पूंजी संचय कहते हैं,
कैपिटल एक्यूमुलेशन।
ये तो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर लगता है।
बिल्कुल,
संचय करो संचय करो। मार्क्स कहते हैं यही इस सिस्टम का मूल मंत्र है।
और इसके नतीजे क्या होते हैं समाज पर?
दो बड़े नतीजे, एक पैसा और उत्पादन के साधन, मतलब फैक्ट्री मशीनें वगैरह, वो कम और कम हाथों में जमा होते जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, बड़ी मछलियां छोटियों को खा जाती हैं।
हाँ, ये तो दिखता है।
और दूसरा एक रिजर्व सेना तैयार होती है बेरोजगारों और कम रोजगार वालों की।
रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर,
बेरोजगारों की सेना।
ये क्यों जरूरी है सिस्टम के लिए?
क्योंकि ये हमेशा काम करने को तैयार रहती है, अक्सर कम मजदूरी पर भी। इससे जो लोग काम कर रहे हैं उन पर दबाव बना रहता है कि ज्यादा मांगे ना करें, ज्यादा नखरे ना करें,
वरना उनकी जगह लेने को बहुत लोग हैं बाहर।
बिल्कुल, ये मजदूरी को नीचे रखने में मदद करती है। इसी से जुड़ा है मार्क्स का पूंजीवादी संचय का सामान्य नियम।
वो क्या है?
कि जैसे जैसे पूंजी बढ़ती है, वैसे वैसे मजदूर वर्ग की हालत समाज के बाकी हिस्सों के मुकाबले और ज्यादा खराब और असुरक्षित होती जाती है, सापेक्षिक गरीबी बढ़ती है।
ये सब तो ठीक है, पर ये पूरा सिस्टम शुरू कैसे हुआ? मतलब एकदम शुरुआत में क्या कुछ लोगों ने मेहनत और बचत से पैसा जोड़ा और मालिक बन गए, और बाकी आलसी थे तो मजदूर रह गए? ऐसी कहानियां तो सुनते हैं हम।
हाँ, सुनते हैं, पर मार्क्स इस कहानी को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत इतनी सीधी सादी, इतनी शांतिपूर्ण नहीं थी।
तो कैसी थी?
इसकी जड़ में थी हिंसा, लूट खसोट और जबरदस्ती। इसे वो कहते हैं आदिम संचय, प्रिमिटिव अक्यूमुलेशन।
आदिम संचय?
हाँ, ये वो ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसने दो चीजें की। एक, जमीन औजार जैसी चीजें, यानी उत्पादन के साधन, कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठे हो गए। दो, आम किसानों और कारीगरों को उनकी जमीनों और साधनों से बेदखल कर दिया गया,
ताकि
उनके पास अपनी मेहनत, अपनी श्रम शक्ति बेचने के सिवा कोई चारा न बचे, वो मजदूर बनने पर मजबूर हो जाएं।
कोई उदाहरण है इसका?
हाँ, बिल्कुल, जैसे इंग्लैंड में किसानों की साझा जमीनों पर बाड़ लगाकर उन्हें भगा दिया गया, जिसे एनक्लोजर्स कहते हैं, ताकि वहां जमींदार भेड़े पाल सकें ऊन के लिए।
अच्छा।
या फिर उपनिवेशों को लूटा गया, अमेरिका से सोना चांदी लाया गया, अफ्रीका से गुलामों का व्यापार हुआ, राज्य की ताकत का, कानूनों का इस्तेमाल करके लोगों को फैक्ट्रियों में कम मजदूरी पर काम करने पर मजबूर किया गया।
बाप रे।
मार्क्स की एक मशहूर लाइन है, वो लिखते हैं कि पूंजी सिर से पैर तक हर रोम छिद्र से खून और गंदगी टपकाती हुई पैदा हुई है।
ओहो, ये तो काफी डार्क तस्वीर है।
हाँ, ये पूंजीवाद के जन्म की कहानी का मार्क्सवादी नजरिया है।
तो इन सारी बातों से, इतने सारे विचारों से खास संदेश क्या निकलते अगर हमें समेटना हो?
मेरे लिए सबसे पहला और बड़ा सबक तो यही है कि शोषण या एक्सप्लॉयटेशन कोई इत्तेफाक नहीं है। ये किसी मालिक के अच्छा या बुरा होने की बात नहीं है सिर्फ। ये पूंजीवादी सिस्टम के डीएनए में है, उसकी बनावट का मसला है। मुनाफा आता ही उस मेहनत से है जिसका पैसा नहीं दिया गया है।
हाँ, हम देखते ना अपने आसपास, ओवरटाइम का पैसा ना मिलना, या कंपनी का प्रॉफिट तो आसमान छू रहा है पर सैलरी वहीं की वहीं।
बिल्कुल। दूसरा, वो मूल्य का श्रम सिद्धांत, ये याद दिलाता है कि हर चीज की कीमत के पीछे कहीं ना कहीं इंसानी मेहनत है।
हाँ, ये हमें इकोनॉमी को सिर्फ नंबरों और पैसे के खेल की तरह नहीं, बल्कि इंसानी काम और उत्पादन के नजरिए से देखने में मदद करता है।
बिल्कुल। सोचो, हाथ से बनी एक शॉल और मशीन से बनी शॉल की कीमत में जो फर्क है, वो सिर्फ कारीगरी का नहीं, उसमें लगी मेहनत के समय और तरीके का भी है।
सही बात। तीसरा है वो वस्तु पूजा और अलगाव वाली बात, एलिनेशन।
हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे हम चीजों के पीछे भागते हैं और इंसानी रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। हम ब्रांड देखते हैं, ये नहीं सोचते कि उसे किसने बनाया, किन हालातों में।
हम अपने काम से ही कटा हुआ महसूस करने लगते हैं, अपने बनाए प्रोडक्ट से, अपने साथियों से। जैसे आजकल फोन पे ऑर्डर किया, कोई चेहरा विहीन डिलीवरी पार्टनर दे गया, बात खत्म, कोई कनेक्शन ही नहीं।
बिल्कुल। चौथा, ये कि सिस्टम में अंदरूनी टकराव और संकट बने रहते हैं। ये कोई स्मूथ चलने वाली मशीन नहीं है,
ये स्थिर नहीं है।
नहीं, मुनाफे की होड़, ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कई बार ऐसे संकट लाती है कि बाजार में माल भरा पड़ा है पर खरीदने वाले नहीं। ओवर प्रोडक्शन, ये जो हम मंदी या स्लोडाउन देखते हैं, मार्क्स के हिसाब से ये सिस्टम का अंदरूनी लक्षण है, कोई बाहरी गड़बड़ी नहीं।
और पांचवा,
क्राव चलता रहता है तनख्वाह पर, काम के घंटों पर, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर। मार्क्स मानते थे कि यही टकराव समाज में बदलाव लाता है।
जैसे ट्रेड यूनियन हड़ताल करती हैं या अपनी मांगे रखती हैं।
हाँ, ये उसी संघर्ष का एक रूप है।
मार्क्स के लिखने का अंदाज भी बड़ा दमदार है, आपने कहा। कुछ लाइनें तो दिमाग में अटक जाती हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे वो पूंजीपति का मंत्र बताते हैं, संचय करो संचय करो, यही मूसा और पैगंबर हैं।
ये दिखाता है कि कैसे इस सिस्टम में बस ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करने की धुन सवार रहती है, चाहे नतीजा कुछ भी हो।
और वो लाइन कि पूंजी अपने जन्म के समय सिर से पैर तक हर छिद्र से खून और गंदगी टपकाती हुई आती है,
ये उस आदिम संचय की हिंसा को याद दिलाती है कि शुरुआत शांतिपूर्ण बचत से नहीं हुई थी।
फिर वस्तु पूजा पर वो कहते हैं कि समाज में रिश्ते व्यक्तियों के बीच सीधे सामाजिक संबंधों के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तियों के बीच भौतिक संबंधों और चीजों के बीच सामाजिक संबंधों के रूप में दिखाई देते हैं।
यानी हम इंसानों से नहीं, चीजों के जरिए जुड़ते हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, सामान, हमारे रिश्ते भी चीजों जैसे हो जाते हैं।
और तकनीक पर उनकी चेतावनी, पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर श्रम की सामाजिक उत्पादकता बढ़ाने के सभी तरीके व्यक्तिगत श्रमिक की कीमत पर लाए जाते हैं।
मतलब हर तरक्की, हर एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका आखिर में मजदूर के शोषण और उस पर कंट्रोल का हथियार बन जाता है।
ये उनकी दलील है।
तो यार, 150 साल पुरानी इन बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम अपनी रोज की जिंदगी में इसे कैसे देख सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, ये अहम सवाल है। पहला तो अपने काम और सैलरी को समझने में।
कैसे
भाई, अगर कंपनी तरक्की कर रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही उसी रफ्तार से? ये अतिरिक्त मूल्य वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें सैलरी नेगोशिएशन को सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि कंपनी के मुनाफे और पावर डायनामिक्स के नजरिए से देखने में मदद कर सकती है।
हाँ, ये तो है। दूसरा,
ये जो हम अपने आसपास इतनी असमानता देखते हैं या आर्थिक उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें समझने का एक फ्रेमवर्क मिलता है
कि ये शायद सिर्फ कुछ लोगों की गलती या बुरी किस्मत न हो,
बल्कि सिस्टम की अंदरूनी चाल हो सकती है। हम न्यूज में इकोनॉमी की खबरों को ज्यादा सवालिया नजर से देख सकते हैं।
क्यों हो रहा है ये सब, किसके फायदे के लिए?
तीसरा, टेक्नोलॉजी को लेकर आजकल AI, ऑटोमेशन, गिग इकोनॉमी।
हाँ बिल्कुल,
इन सब की धूम है। मार्क्स हमें पूछते हैं, क्या ये तकनीक हमें सच में आजाद कर रही है, या काम को और ज्यादा अनिश्चित, निगरानी वाला और शायद शोषण वाला बना रही है? उन गिग वर्कर्स के बारे में सोचो जिन्हें ऐप कंपनियां कर्मचारी नहीं मानती, पार्टनर कहती हैं, पर क्या उन्हें पार्टनर जैसे अधिकार और सुरक्षा मिलती है?
सोचने वाली बात है। चौथा, हमारी खरीदारी की आदतें, कंज्यूमर कल्चर।
हाँ, हम क्यों खरीदते हैं, क्या सिर्फ जरूरत के लिए या विज्ञापनों और सोशल प्रेशर से बनी इच्छाओं के लिए?
क्या हम कभी सोचते हैं कि जो टी शर्ट हम पहन रहे हैं, जो फोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बनाने वाले को सही मजदूरी मिली होगी, काम करने का माहौल ठीक होगा?
ये वस्तु पूजा हमें इसी कंज्यूमर कल्चर पर सवाल उठाने को कहती है, पर्दे के पीछे देखने को।
और हाँ, दुनिया भर में जो देशों के बीच असमानता है या जो लड़ाइयां और आंदोलन चल रहे हैं,
उन्हें समझने में भी ये मदद कर सकता है। पैसे का बहाव, सस्ती लेबर की खोज, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा, ये सब कहीं ना कहीं पूंजी के फैलने की, जमा होने की कहानी से जुड़ते हैं।
तो भाई, मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये जो आर्थिक सिस्टम है हमारा, ये कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, ये इंसानों का बनाया हुआ है, इतिहास में बना है, और इसे समझा जा सकता है, इस पर सवाल उठाया जा सकता है और शायद बदला भी जा सकता है। हमें सिर्फ सतह पर जो दिख रहा है, उसके नीचे के रिश्तों को समझना होगा।
बिल्कुल सही कहा। और मेरे लिए ये कि मुश्किलें जैसे असमानता या आर्थिक संकट, वो सिस्टम की कोई गड़बड़ी या खराबी नहीं है जिन्हें ठीक किया जा सकता है।
अच्छा,
बल्कि वो शायद उसके चलने के तरीके का हिस्सा है। अब देखिए, मार्क्स के विश्लेषण से हम सहमत हों या ना हों, पूरी तरह से या कुछ हिस्सों में,
हाँ वो अलग बात है,
लेकिन ये हमें दुनिया को ज्यादा गहराई से, ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देखने की ताकत जरूर देता है। यह हमें सवाल पूछने और एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया के बारे में सोचने को उकसाता है। यह दिखाता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबरों और ग्राफ का खेल नहीं है, यह हमारी जिंदगी, हमारे हक और हमारे भविष्य से बहुत गहराई से जुड़ा है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।